ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூர் அபவுட் டு லிசன் யதி பஞ்சகம் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிதம்பரானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பகவான் சங்கராச்சாரிய துவாரா விரச்சித் யதி பஞ்சகம் ஆரம்ப கே தோ ஸ்லோக. வேதாந்த வாக்யே சதாரமந்தோ விக்ஷான் மாத்ரேன ச தோஷ்டிமந்த வேதாந்த வாக்யே சதாரமந்தோ விக்ஷான் மாத்ரேன அசோகவந்த கருணைகவந்த காபீனவந்த கலோ பாக்யவந்த அசோகவந்த கருணைகவந்த காபீனவந்த ஹலோ மூலம் தரோ கேவல மாஷயந்த பாணித்வயே போகுமாத்ரயந்த ீவோசயந்த காபீனவந்த ஹலோ பாக்யவந்த சந்தாமபிஸ்த்ரீமிவோசயந்த காபீனவந்த ஹலோ பாக்யவந்த வேதாந்த வாக்கியேஷு சதாரமந்தோ விக்ஷான மாத்ரேன சதுஷ்டிமந்த. வேதாந்த வாக்கியம் மே ஜோ ரமண் கர்த்தே ஹை, ரமண் கர்த்தே ஹை, ஆனந்த கர்த்தே ஹை. जबरदस्ती कोई रमण नहीं कर सकता, कर सकता प्रसन्नता पूर्वक. और विक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंत, विक्षान्न मात्र से जो संतुष्ट रहते हैं, अशोकवंत दुखी नहीं होते, करुणैकवंत लेकिन दयालु हैं, कॉपी न बनता खल भाग्यवंत. ऐसे कॉपीनवान निश्चित ही भाग्यशाली है. श्रीमद् भागवत में संतों का लक्षण किया, तितिक्षव कारुणिका स्वर्दा सर्वदेहिनाम, अजात शत्रव शांता साधव साधभूषण, மையனன்யேன பாவேன பக்தி குர்வந்தி எதிரணா. மகாத்மா கௌன் ஹை, சந்த் கௌன் ஹை, தோ பதாயா தித்திக்ஷவ, ஜோ தித்திக்ஷு அர்த்தாத் ஜோ சஹன் கர்த்தே ஹை. சஹனம் சர்வ துக்கானாம் அப்ரதீகார பூர்வகம், सभी दुखों को सहन करते हैं अप्रतिकार पूर्वकम, बिना किसी प्रतिक्रिया दिए. क्या बोलेंगे? बिना रिएक्ट किए, है ना,
सभी दुखों को सहन करते हैं लेकिन बिना रिएक्ट किए। अप्रतिकार पूर्वकम सहनम सर्व दुखानाम, ऐसे होते हैं संत। दूसरा लक्षण किया कारुणिका, लेकिन दयालु होते हैं। और अक्सर इस बात को समझने में भूल होती है अथवा अक्सर हम इसके उल्टा करते हैं कि कारुणिका पहले और तितिक्षवा बाद में, नहीं समझे। होना यह चाहिए कि तितिक्षु अपने लिए हो, कारुणिका दूसरी के लिए हो, लेकिन होने ऐसा लगा कि कारुणिका अपने लिए हुए और तितिक्षु दूसरों के लिए, कि अपना जरा सा भी दुख सहन नहीं हुआ, अरे बाप रे बहुत परेशानी है। अच्छा बुरा तो नहीं मानेंगे ना, गुजराती कुछ ज्यादा ही कारुणिका होते हैं अपने लिए, नाजुक, बड़े प्यारे लोग होते हैं लेकिन नाजुक होते हैं। सहन करने की बात आए तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग दूसरों के लिए भी कारुणिक हैं, दूसरों का भी दुख नहीं देख सकते, ये अच्छी बात है। लेकिन साधु कैसा होता है, संत कैसा होता है कि वो ना अपना दुख देख सके, अपना तो दुख सहन कर ले, पता ही न चले, देखे ही ना, मालूम ही न पड़े, ध्यान ही न दे, लेकिन दूसरों का दुख न देख सके, दूसरों का कष्ट न दे सके। अब देखिए, संत का यह लक्षण है, साधना का लक्षण है, तो सिद्ध का भी लक्षण। जब तक सिद्ध नहीं हुआ है तब तक तितिक्षु है, और जब सिद्ध हो गया है तो अशोक बनता। अगर इसकी बारीकी आप समझ सके तो वो ये है कि तितिक्षु में दुख का आभास तो है, दुख का बोध तो है, पता तो चल रहा है कि दुख है, मालूम तो पड़ रहा है कि दुख है, लेकिन दुखी नहीं होता। कि आप सफर करते हैं, कहीं जाना है, साधन नहीं मिला, पैदल चल रहे हैं, धूप है, कष्ट हो रहा है, लेकिन पहुंचना जरूरी है, चल रहे हैं, पसीना निकल रहा है, धूप भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, लेकिन चल रहे हैं। तो ये जो आपकी यात्रा है, आप चल रहे हैं और उस चलने में कष्ट है, लेकिन आप उस कष्ट को जानते हुए भी क्या बोलते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, है तो है, क्या कर सकते हैं, महत्व नहीं दे रहे, लेकिन उस कष्ट का बोध हो रहा है, पता चल रहा है कि हां है, ऐसा नहीं कि कष्ट को भूल गए, लेकिन आप सहन करते हैं, तितिक्षा है। लेकिन आप ऐसी मस्ती में हैं, ऐसे आनंद में डूबे हैं कि जहां आपको कष्ट का बोध ही न हो, पता ही न चले कि दुख है, ऐसा होता है, होता है, ऐसा भी होता है। और मैं आपको बहुत प्यारा उदाहरण दूं, पहले बता चुका होऊंगा जरूर, कि बद्रीनाथ में एक महात्मा चढ़ रहे थे, जा रहे थे कहीं, वहां ऑक्सीजन की कमी होने से जरा सांस लेने में तकलीफ होती है, आप जरा भी चलो तो दम फूलने लगता है, कोई सामान ले हाथ में लेकर के चलने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, कठिन है। और महात्मा कोई सामान नहीं, जा रहे लेकिन दम फूलने लगा, श्वास तेज हो गई। और तभी उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की लड़की अपने भाई को पीठ पर बिठा के आराम से चली जा रही, कोई परेशानी नहीं। तो महात्मा ने कहा कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरे पास कोई सामान नहीं, लेकिन मैं चलता हूं तो श्वास फूल रहा है, और तुम इतना वजन लादे हो, इतना बोझ लादे हो, तुमको फिर भी परेशानी नहीं हो रही। जहां महात्मा ने यह कहा कि इतना वजन लादे हो, इतना बोझ लादे हो, तो लड़की रुकी और संत की तरफ देखा, कहा कि महाराज क्षमा करना, ये बोझा नहीं, मेरा भाई है। समझ में आया? अच्छा, अगर तौलने जाएगी तो उसमें वजन नहीं होगा, कि तराजू में रखेगी तो उस भाई में भार नहीं होगा? होगा, लेकिन भार समझा नहीं, भाई समझा। अब भाई समझा है तो फिर उसको बोझे का कष्ट होगा, जब भार समझा ही नहीं है तो कष्ट कहां से होगा? कि जरा सोचो कि आपका हाथ भी आपके साथ जुड़ा है, अगर ये नहीं होता तो भी आपको ये नहीं हिलाना पड़ता, तो आपको आसानी होती कि ये भी नहीं लादना पड़ता। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि इसको अपने अपना हिस्सा बना लिया। अगर ये न समझ में आए तो ऐसा समझो कि बद्रीनाथ में आप कपड़े बहुत पहनते हैं ठंड के कारण, वो भी तो बोझ ही है, कि वो भी ना होते तो चलना आसान होता, लेकिन आपको वो बोझा लगता है? नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी अंग बन गए, आपकी सुरक्षा देने वाले बन गए, छड़ी लेके चलते हैं लोग, कई चीजें ऐसे भी हैं कि दुख है लेकिन दुख का एहसास नहीं होता, क्योंकि मनोवृत्ति बदल गई। और यह महत्वपूर्ण है, मन की वृत्ति का बदलना महत्वपूर्ण है। मनोवृत्ति बदल गई कि भार की वृत्ति थी तो दुख था, कि बोझा लदा हुआ है पीठ पर तो दुख है, दुख का एहसास है, कष्ट है, कष्ट का एहसास है, लेकिन आप सहन करते हैं, बना रहे एहसास कि काम है मेरा, सहन करना ही चाहिए। तो तितिक्षा, कि दुख का एहसास हो लेकिन सहन कर रहे हो तो तितिक्षा है, और मनोवृत्ति बदल गई कि बोझा नहीं भाई है, तो दुख तो है लेकिन एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि वृत्ति बदल गई, चिंतन बदल गया। अरे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान बहुत जोर देते हैं एक बात पर, और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, चिंतन शैली। जैसे हम जीवन शैली बोलते हैं ना, जीवन शैली, जैसे हम वाचन शैली बोलते हैं ना, ऐसे ही चिंतन शैली, क्या आप सोचते क्या हो, वो महत्वपूर्ण। आप सोचते क्या हो, आप सोचते कहां हो, यह भी महत्वपूर्ण है। कि देह में सोचते हो, कि संसार में सोचते हो, कि व्यवहार में सोचते हो, कि परमात्मा में सोचते हो, कि दुख में सोचते हो, कि सुख में सोचते हो, कहां सोचते हो, क्या सोचते हो। और मैं आपको कहूं कि आप परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी सोचो, अध्यात्म के अतिरिक्त कुछ भी सोचो, कुछ भी विचार करो, दुखों का एहसास खत्म नहीं हो सकता। यह अटल और शाश्वत सत्य है, प्रामाणिक सत्य है, कि जैसे सूर्य पूर्व दिशा में ही उदित होता है, यह शाश्वत सत्य है, ये कभी बदल नहीं सकता कि किसी के प्रयास से भी नहीं बदला जा सकता कि सूर्य पश्चिम से उगने लगे, संभव है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लोग आकाश में चलें और सिर को पृथ्वी की तरफ रखें। शाश्वत सत्य है, बदला नहीं जा सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लोग कानों से देखने लगे और आंखों से सुनने लगे, संभव नहीं है, स्वभाव है। यही निश्चित है कि ऐसा ही होगा कि पैरों से चलेंगे कि हाथों से खाएंगे, यह एक मशीनी क्रिया है, निश्चित है कि ऐसा ही होगा कि जिह्वा से रस लेंगे, कि नाक से सूंघेंगे, कि त्वचा से स्पर्श करेंगे, ये निश्चित है। और जैसे ये निश्चित है, जैसे ये निश्चित है, वैसे ये भी निश्चित है, और शायद शायद जितना ये निश्चित है उससे ज्यादा निश्चित वो है कि जब तक व्यक्ति के अंदर में आध्यात्मिक विचार नहीं पैदा होंगे, परमार्थिक चिंतन पैदा नहीं होगा, चिंतन शैली में परमात्मा नहीं आएगा, आत्मा नहीं आएगा, वेदांत विचार नहीं आएगा, तब तक आदमी के जीवन में दुख के एहसास को खत्म करना असंभव है, मिट नहीं सकता। कुछ भी कर लो, कितने भी प्रयास कर लो, कि आप समाधि में बैठे हो ना, ध्यान में भी बैठे हो ना, और वेदांत का विचार नहीं है, कि आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, कि परमात्म चिंतन नहीं है, तो ध्यान की अवस्था में भी पैर में चुभने वाली सुई का एहसास होगा। हालांकि ध्यान भी आध्यात्मिक क्रिया है, यौगिक क्रिया है, लेकिन उसमें भी अगर विचार चिंतन शैली आध्यात्मिक और पारमार्थिक न हो तो दुख का एहसास वहां पर भी रोकना कठिन है। रुका भी तो थोड़ी देर के लिए, कि जब तक तुम समाधि में डूबे हो, कि नींद में आप होते हो तो दुख का एहसास नहीं होता, मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जरा सोचो कि सो रहे हो और सोते समय भी अगर कोई सुई को चुभोए तो एहसास होगा कि नहीं, बोलो, होगा? क्यों होगा? क्योंकि आध्यात्मिक विचार नहीं था, चिंतन शैली नहीं थी। और दूसरी तरफ घटनाएं ऐसी हैं कि मंसूर के हाथ काटे गए और वो मुस्कुराते रहे, कि जीसस को सूली पर चढ़ाया गया कि उन्हें दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। किसी ने पूछा फरीद से, शेख फरीद, कि कैसे संभव है कि मंसूर के हाथ काटे गए, कि जीसस को सूली दी गई, ये मुस्कुराते रहे, इनको फर्क नहीं पड़ा, इनको दुख नहीं हुआ, संभव कैसे है? और हमारे लिए तो संभव बिल्कुल नहीं है सोचा जाना ऐसा, हम तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि संभव है कि हमारे हाथ में सुई भी चुभे तो हमें कष्ट होता है, और वहां हाथ काट दिए फिर भी कष्ट नहीं, कमाल है। क्यों, कैसे? महात्माओं की बताने की शैली बड़ी अजीब होती है। तो शेख फरीद ने उत्तर देने से पहले कहा कि जाओ जरा नारियल लेके आओ, कि नारियल मंगाया और कई नारियल मंगाए, अनेक नारियल, पके हुए भी, कच्चे भी, नारियल लाने के बाद शिष्य ने कहा फरीद से कि आ गए लेकिन मेरे सवाल का जवाब, फरीद ने कहा बाद में, पहले इनको तोड़ो, तो तोड़ने लगा। तो कच्चे नारियल टूटे तो छिलके के साथ नारियल भी टूटे, कि अंदर में जो क्या बोलेंगे आप, गिरी, खोपरा, मलाई सूख जाएगा तो क्या होगा, गरी गिरी गरी जो भी समझ रहे हैं ना, कि कच्चा नारियल टूटे तो वो भी टूटे, लेकिन जो पक गया, समझ रहे हैं, जो पक गया, पके हुए नारियल को तोड़ा तो छिलका अलग और अंदर का गोला पूरा निकला, साबुत। आपने देखा है कभी, साबुत, पूरा साबुत, कि चोट भी नहीं उसे, कि ऊपर का छिलका निकल गया और अंदर का नारियल साबुत। और जैसे ही यह घटना घटी कि नारियल को तोड़ने के बाद और अंदर का गोला निकला, फरीद ने तुरंत कहा कि अगर तुम्हें समझ में आए तो तुम्हारा यह जवाब है कि तुमने पूछा कि मंसूर के हाथ काटे गए और वो रोया क्यों नहीं, कि जीसस को सूली दी गई कि वो रोए क्यों नहीं, कि जैसे ये छिलका अलग हो गया, क्योंकि ये पका हुआ है, इसने उससे तादाद में छोड़ दिया, संबंध का त्याग कर दिया, ऐसी उन महापुरुषों ने देहात्म भाव से अपने आप को अलग कर दिया। भागवतकार कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि परीक्षित को सर्प ने काटा तो परीक्षित की मृत्यु हुई, कि परीक्षित को सर्प ने काटा तो सूत जी कहते हैं नहीं नहीं, परीक्षित तो सर्प को काटने, सर्प के काटने से पहले ही देह छोड़ चुके थे। क्या बात है, देह पहले ही छूट गया था, कि देहात्म भाव छूट गया था, कि जो चिपका हुआ था, और जो चिपका है वो कच्चा है, और जो अलग हो गया वो पक गया है। वेदांत विचार चिंतन शैली, चिंतन शैली में वेदांत का विचार आ गया, चिंतन शैली में अध्यात्म आ गया, चिंतन शैली में। हमारे प्यारे महात्मा वो कहते हैं कि नारियल में अगर सूर्य की गर्मी पहुंच जाए तो वो अलग हो जाता है, सूर्य की गर्मी, कि सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश तेज वो अगर पहुंचे